समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो।
पूरे ब्रह्मांड में केवल जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, मीठा मीठा बोलना चाहिए। वेल, एक नई सुबह, एक नया दिन और ढेर सारी नई चुनौतियां और साथ में समाचार पत्र का कार्यक्रम आज सवेरे, जिसे प्रस्तुत करने के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और नीना अर्गल। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
Hello Ravi and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. We bring to you our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 6th of August 2025. Let's begin with the headlines.
Ji bilkul, shuru karte hain silsila mukhya samacharon ka.
Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Kartavya Bhavan 3 at Kartavya Path in New Delhi today. On the occasion, he will also address a public program. Kartavya Bhavan 3 is part of the broader transformation of the Central Vista. We have a report from our correspondent.
Kartavya Bhavan 3 is a modern office complex of about 1.5 lakh square meters spread over two basements and seven floors. It will house key ministries including Home, External Affairs, Rural Development, MSME, DOPT and the Office of the Principal Scientific Advisor. It will lead in sustainability with various power saving and recycling facilities resulting in 30% energy saving and also generating over 5 lakh units of electricity annually. The new building will exemplify modern governance infrastructure featuring IT-ready and secure workspaces, ID card-based access controls, integrated electronic surveillance and a centralized command system. It will also lead in sustainability with double glazed facades, rooftop solar, solar water heating, advanced heating, ventilation and air conditioning systems and rainwater harvesting. With Raisuddin, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत फिलीपींस साझेदारी को दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा है कि ये क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का आधार है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमू अल्देज मार्कोस जूनियर का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में निरंतर उच्च स्तरीय जुड़ाव, बढ़ता व्यापार और वाणिज्य, समुद्री क्षेत्र सहित मजबूत रक्षा और सुरक्षा सहयोग और विकास साझेदारी शामिल है। राष्ट्रपति ने पहलगांव आतंक हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत के प्रति एकजुटता और समर्थन देने के लिए फिलीपींस सरकार को धन्यवाद किया।
गति शक्ति विश्वविद्यालय एंड सैप लैब्स India Innovation Park signed an MOU during the inauguration ceremony of Innovation Park at Devanahalli, Bengaluru, Karnataka. Delivering a keynote address at the event yesterday, Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav said that the SAP Labs India Innovation Park is a timely investment in the Indian growth story. He added that in anchored Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat at 2047. Mr. Ashwini said that this campus reflects global confidence in India's talent and innovation ecosystem. It will further boost India's position as a trusted technology partner.
सरकार ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि निजी संस्थाओं को अपतटीय क्षेत्रों में परमाणु खनिजों के खनन और अन्वेषण की अनुमति मिल रही है। खान मंत्रालय ने कहा कि ऐसी रिपोर्टें भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अपतटीय क्षेत्र परमाणु खनिज संचालन अधिकार नियम 2025 के अंतर्गत परमाणु खनिजों के संचालन का अधिकार केवल सरकार, सरकारी कंपनियों या निगमों को है, निजी संस्थाओं को नहीं। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी खबरें देने वाले भारत में परमाणु खनिजों को नियंत्रित करने के प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों और नीतिगत ढांचों के तथ्यों, प्रावधानों से अवगत नहीं लगते।
In chess, the third edition of the Chennai Grand Masters tournament will kick off in Chennai today. The tournament includes two round-robin groups split into two sections, the Masters and the Challengers. In Masters Round 1, clashes lined up today. Indian Grand Master Arjun Erigasi is set to face American Evander Liang, while Vidit Gujarati will be up against the Dutch player Jordan van Foerst. Meanwhile, the Challengers sections presents an all-Indian contest featuring two women, Harika Dronavalli and Vaishali Ramesh Babu, including in the lineup. Both sections follow a single round-robin format with participants playing 9 rounds.
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को जीवंत और सफल व्यावसायिक इकाइयों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश में 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को देखते हुए अभी तक 35,000 से अधिक नई सहकारी समितियों का गठन हुआ है। श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र भूमिहीन और गरीब लोगों के लिए खुशहाली का मार्ग खोल सकता है। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के समाचारों की जानकारी दे रही हैं नीना अर्कल।
Starting with Chennai, the Employees State Insurance Corporation, ESIC, has launched a special initiative called the Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees, SPREE, aimed at increasing social security coverage. This scheme is active from July 1 to December 31, 2025. Speaking to the media in Chennai yesterday, ESIC Regional Director A. Venugopal said that so far 1,013 establishments have registered over 2,000 employees under the scheme. He noted that Tamil Nadu ranks second in the country for ESI coverage with 43.77 lakh insured workers following Maharashtra. The registration process is fully online, making it quick and hassle-free. Employers can choose their own registration date, and there will be no penalties for those registering for the first time during the scheme period. The director also mentioned that children of insured workers are eligible for reservations in ESI medical colleges under the management quota through the NEET exam. The scheme covers workers in factories, MSMEs with at least 10 employees, as well as those employed in restaurants, theatres, road transport, educational institutions and newspaper organisations. Now Ravi, moving on to Bengaluru. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the Namma Metro Yellow Line in Bengaluru on 10th of this month. This 19.15 kilometer line connects Electronic City to Bommasandra and has 16 stations. It includes interchanges at RV Road Green Line and Jayadeva Hospital Pink Line. Built at a cost of over 7,600 crore rupees, the line aims to reduce traffic congestion, especially on the busy route to Hosur, Tamil Nadu. The Prime Minister will also lay the foundation stone for Metro Phase 3, which will add 2 elevated corridors totaling 44.65 kilometer and 31 stations. The Union Cabinet had approved this project that plans 2 elevated corridors. One corridor will link JP Nagar to Kempapura and the other will run from Hosahalli to Kadabagre. With this, Bengaluru's metro network will grow to over 220 kilometers. Additionally, the Prime Minister will flag off a new Vande Bharat Express from Bengaluru to Belagavi with stops at Tumkuru, Devangire, Haveri, Hubli and Dharwad. And now news from Hyderabad. Telangana has recorded a non-performing asset NPA rate of 2.27% on bank loans disbursed to women self-groups, SHGs. slightly higher than the national average of 1.76%. As per the data tabled in the Lok Sabha yesterday, the NPA figure places the state in the mid-tier category nationwide. In comparison, Andhra Pradesh reported an NPA of just 0.48%, which is among the lowest after the launch of Deen Dayal Antodaya Yojana, National Rural Livelihoods Mission. Banks across India have disbursed over 11.07 lakh crore rupees loans to women SHGs with 2.99 lakh crore rupees outstanding. The government has focused on facilitating access to institutional credit for rural women by engaging with regulators and banks, issuing annual circulars through the RBI and NABARD, and conducting coordination meetings at the national and state levels. And now, the news just in from Uttarakhand. After a devastating cloudburst triggered a flood yesterday in Kheer Ganga River, Dharali, in Uttarkashi district of Uttarakhand, relief and rescue operations are ongoing at a war footing. The Army, NDRF, SDRF, district administration and other concerned agencies are actively involved in rescue and relief efforts. Over 130 people have been safely evacuated so far. Relief camps have been set up with arrangements for food, water, medicine and shelter. A correspondent reports that hospitals in the affected region have been placed on alert to strengthen healthcare facilities.
Following the directives from the Health Secretary Dr. R. Rajesh Kumar, three teams of specialist doctors have been dispatched to Uttarkashi. Additional beds have been reserved at Harshal and Batwari PHC, District Hospital Uttarkashi, AIIMS Rishikesh and Dune Hospital. Ambulance services have been placed on high alert and all doctors' leaves have been cancelled with immediate effect. To expedite relief efforts, Mi-17 and Chinook helicopters from the Army along with helicopters from UKADA have been requested. Aerial supports will commence once weather conditions improve. Meanwhile, rainfall continues across various parts of the state for third consecutive day. The Met Department has issued orange and yellow alert for heavy rains in different regions. In Rudraprayag, the Kedarnath Yatra has been temporarily halted for safety reasons. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
Ravi, what do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
मेरे पास भी नीना इन सभी जगहों से बहुत से समाचार हैं, तो शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं.
Sure.
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कल ब्रिटेन की संसद की उपाध्यक्ष नुसरत घानी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्य और ऐतिहासिक संबंध हमारी आधुनिक साझेदारी को दिशा देते हैं. उन्होंने भारत ब्रिटेन संबंधों में हो रहे रणनीतिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देश अब व्यापार, शिक्षा, रक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशल सेंटर स्कूल के नए अकादमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली के शिक्षा परिदृश्य में व्याप्त कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव दिया कि विश्वविद्यालय के आसपास के सरकारी और निगम के विद्यालयों को गोद लिया जाना चाहिए और उनमें मार्गदर्शक की भूमिका निभाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी साप्ताहिक रूप से जाकर विद्यालय में छात्र छात्राओं को पढ़ाएं और उन्हें प्रेरित करें. इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार एक बार फिर यूथ स्पेशल शुरू कर रही है जो विश्वविद्यालय के मार्ग पर चलेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल तिमारपुर स्थित संजय बस्ती में स्वच्छता अभियान चलाया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में लगातार हजारों जगह स्वच्छता अभियान का कार्य रोजाना चल रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी RWA धार्मिक और सामाजिक लोग तथा जनप्रतिनिधि इस अभियान से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति आसपास सफाई करेगा तो शहर को साफ, सुंदर और हरित बना पाएगा. इस दौरान दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली के नागरिक स्वयं बढ़ चढ़कर इस स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं और हम सब के प्रयासों से दिल्ली स्वच्छ और सुंदर नजर आएगी. और अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर. महाराष्ट्र के लोकायुक्त न्यायमूर्ति वीएम कनाडे सेवानिवृत्त ने कल मुंबई स्थित राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को वर्ष 2024 के लिए लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के कार्य निष्पादन पर 52वीं वार्षिक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की. एक आधिकारिक बयान के अनुसार लोकायुक्त ने वर्ष 2024 में अपने पास दर्ज 9433 मामलों में से कुल 5146 मामलों का निपटारा किया. इसमें बताया गया है कि 75% से अधिक शिकायतों का निवारण शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के अनुसार किया गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा जो यात्रियों को राज्य परिवहन विभाग द्वारा संचालित ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बसों के माध्यम से यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगा। कल मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि इस सेवा का नाम चावा राइड होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह सेवा न केवल नागरिकों को एक सुरक्षित और किफायती यात्रा विकल्प प्रदान करेगी बल्कि स्थानीय युवाओं को आजीविका कमाने में भी मदद करेगी। और नीना, आप चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर।
जी,
प्रख्यात शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उचित क्रियान्वयन बच्चों के समग्र विकास में सहायक होगा। सोनम वांगचुक ने कल कोलकाता के एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में भाग लिया। वे लद्दाख के छात्र शिक्षा एवं सांस्कृतिक आंदोलन के संस्थापक हैं। उन्हें बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स ने प्रसिद्धि दिलाई थी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई दुनिया के लिए खतरा है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो 150 वर्षों में नदियां सूख जाएंगी। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और नीना के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी आज बादल छाए रहेंगे और छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
रवि, हियर्स वेदर न्यूज फ्रॉम चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद नाउ।
जी,
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 25 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 32 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 20 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between minimum of 23 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और नीना, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, अपने श्रोताओं को इतिहास में घटित हुई घटनाओं की जानकारी दें। हम श्रोताओं को जानकारी देना चाहते हैं कि आज हिरोशिमा दिवस है जो हर वर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा नगर पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया था। इस बम के प्रभाव से 13 वर्ग किलोमीटर में तबाही मच गई थी और हिरोशिमा की लगभग 3.5 लाख की आबादी में से 1,40,000 लोग एक ही झटके में निधम मारे गए थे। और ये सब सैनिक नहीं थे, इनमें से अधिकांश साधारण नागरिक, बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां थीं। इसके बाद भी अनेक वर्षों तक अनगिनत लोग विकिरण के प्रभाव से मरते रहे। अमेरिका इतने पर ही नहीं रुका, उसे एक अन्य प्रकार के बम के प्रभावों को अभी और आजमाना था। इसलिए इस अमानवीय विनाश के 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को फैट मैन नामक प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिराया गया, जिसमें अमानित 74,000 लोग विस्फोट और गर्मी के कारण मर गए। और इसमें भी नीना ज्यादातर बहुत ही निर्दोष नागरिक थे।
रवि, इट्स रियली सैड दैट दिस हैपेंड इन द पास्ट ऑफ कंट्रीज, बिकॉज वॉर इज नेवर द आंसर फॉर ह्यूमैनिटी एंड पीस।
दो देशों के बीच लड़ाई तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत के द्वारा अगर आप किसी मसले को सुलझा सकते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और नीना, यही नहीं, स्तनपान के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह को पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। स्तनपान सप्ताह के दौरान माँ के दूध के महत्व की जानकारी दी जाती है। नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध अमृत के समान है। माँ का दूध शिशुओं को कुपोषण और अतिसार जैसी बीमारियों से बचाता है और स्तनपान को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। और शिशुओं को जन्म से 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को इस सप्ताह के दौरान विशेष रूप से एनकरेज किया जाता है, नीना, प्रोत्साहित किया जाता है।
Yes, it develops an emotional bond between the mother and child too.
जी, और अब आइए पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को, जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। नीना,
In 1825, Bolivia declared its independence from Spain. In 1906, freedom fighter Chittaranjan Das, along with other leaders, launched the Vande Mataram newspaper. In 1909, American Alice Ramsey and three friends became the first women to complete a transcontinental automobile trip.
1914 में आज के दिन ऑस्ट्रिया द्वारा रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी।
American swimmer Gertrude Ederle of New York became the first woman to swim the English Channel, breaking the men's record by nearly 2 hours.
और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, 1945 में आज के दिन जापानी नगर हिरोशिमा पर अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया था।
In 1962, after 300 years of British rule, Jamaica became an independent country within the Commonwealth of Nations. In 1996, NASA expressed the possibility of life on Mars. In 1986, the first test tube baby in India, Harsha Chawda, was born in Mumbai. In 1990, the UN Security Council imposed economic sanctions on Iraq, ruled by Saddam Hussein, for its invasion of Kuwait 4 days earlier.
सन 2001 में आज के दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक समझौता हुआ. सन 2002 में भारत और पाकिस्तान में तनाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों को वापस बुलाया. आज के दिन सन 2004 में वर्ष 2000 में फिजी के प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के खिलाफ तख्ता पलट के मामले में उपराष्ट्रपति जोपे सेनी लोली को 4 वर्ष की जेल हुई. सन 2007 में आज के दिन मध्य त्रिनिदाद में एक पुराने हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया. सन 2007 में ही हंगरी के वैज्ञानिकों ने लगभग 80 लाख साल पुराने देवदार के वृक्ष का जीवाश्म प्राप्त करने का आज ही के दिन दावा किया था नीना. और सन 2008 में आज ही के दिन सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में 880 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल बॉयलर लगाने का ऑर्डर मिला, जो इस श्रेणी का पहला ऑर्डर है. और सन 2008 में बंगाल सरकार ने टाटा समूह को सिंगापुर से संयंत्र नहीं हटाने पर राजी किया, सिंगापुर. और सन 2008 में आज के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने सिमी पर प्रतिबंध हटाने के विरुद्ध फैसले पर रोक लगाई थी.
In 2012, NASA's robotic vehicle Curiosity, also called Mars Science Laboratory, landed on Mars and soon began transmitting images of the planet's surface.
और अब समय हो गया है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों और जन्मदिन के बारे में बातचीत करने का. तो इस क्रम में नीना, आज सबसे पहला नाम है एस के पोटकाट का, जिनका जन्म हुआ 14 मार्च 1913 और निधन 6 अगस्त 1982 को. आप मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे. भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता मलयालम उपन्यासकार पोटकाट इंडोनेशिया, बालिद्वीप और अफ्रीका के प्रवास वर्णन, विश्व कन्या नामक कहानी संग्रह और ओरू तेर शरवंटे कथा आदि केरल अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे. ये 1962 में लोकसभा के सदस्य भी चुने गए थे और नीना 1971 में केरल साहित्य अकादमी के वे सभापति मनोनीत किए गए थे और अपने प्रगतिवादी विचारों के कारण वे सोवियत रूस की भी यात्रा कर चुके थे.
टुडे वी फॉन्डली रिमेम्बर मुरलीधरन पिल्लई, popularly known as Murali, who was an Indian film, stage and television actor and author. He mainly appeared in Malayalam films and Tamil films. He won the National Film Award for Best Actor for his portrayal of Appa Mestri, a communist freedom fighter with Professional Weaver in 2002 film Nedugaran, regarding by film critics as one of the greatest actors in Indian cinema. He was known for his powerful portrayal of character roles, lead roles and negative roles. He played the leading role in 1992 film Aadharam, which gave a break to his career. Here's a song from this movie.
Manjadi mani kundu manikya kudam niranyu illana paadunna vanamala kiliyai manasu தங்க மனசு ஆரதி பூத்திங்கள் தூரே தொழுதுணர்ந்தும் குளிராங்குன்னிலாய் நீட.
और अब जिक्र वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का, जिनका जन्म हुआ 14 अक्टूबर 1924 और निधन 6 अगस्त 1997 को. आप असमिया साहित्यकार थे. इनके द्वारा रचित उपन्यास इया रुइंगम के लिए उन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. 1979 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. समाजवादी विचारों से प्रेरित वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य कहानीकार, कवि, निबंधकार और पत्रकार थे. वे साहित्य अकादमी दिल्ली और असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रहे। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने विभिन्न विधाओं में 50 से अधिक पुस्तकें लिखी और उनका अधिकांश लेखन असमिया में हुआ। हिंदी में उनका बहुत थोड़ा बहुत ही साहित्य उपलब्ध है नीना, लेकिन उससे ये अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि वे किस कोटि के लेखक थे। उन्होंने 1950 में संपादित असमी पत्रिका रामधेनु का संपादन कर असमिया साहित्य को नया मोड़ दिया था।
Alfred First Baron Tennyson was a British poet. Tennyson's early poetry, with its medievalism and powerful visual imagery, was a major influence on the pre-Raphaelite Brotherhood. Tennyson also excelled at penning short lyrics such as Break, 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 The Charge of the Light Brigade, Tears, Idle Tears, and Crossing the Bar. A number of phrases from Tennyson's work have become commonplaces of the English language, including Nature, Red in Tooth and Claw, 'Tis Better to Have Loved and Lost Than Never to Have Loved at All, There's Not to Reason Why, There's But to Die. To do and die. My strength is as strength of 10, because my heart is pure. To strive, to seek, to find, and not to yield. Knowledge comes from wisdom lingers, and the old order changeth, yield place to new. Here is the 9th most frequently quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotations. Here's a recitation of his well-known poems, The Brook.
I come from haunts of coot and hern. I make a sudden sally, and sparkle out among the fern to bicker down a valley. By 30 hills I hurry down, or slip between the ridges, by 20 thorps a little town, and half a 100 bridges, till last by Phillips Farm I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever.
और नीना, अब जानकारी भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट में शामिल रही विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 को और आपका निधन हुआ 6 अगस्त 2019 को। भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष महिला नेत्रियों में सुषमा स्वराज जी गिनी जाती थीं। सुषमा स्वराज जी 11वीं, 12वीं और 15वीं लोकसभा की सदस्य भी रहीं। उन्हें सन 2009 में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की 19 सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। सुषमा स्वराज देश की राजधानी दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही थी।
Geraldine Horner is an English singer, songwriter, author and actress. Halliwell came to international prominence in the 1990s as Ginger Spice, a member of the wildly successful girl group The Spice Girls, which was also the best-selling girl group of all time, with over 85 million records sold, of which 75 million copies were sold with quintet lineup, including Halliwell. In 2017, she released a successful charity single, Angels in Chains. Let's listen to this song from the girl group.
I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna take a sip. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel.
और नीना, आज जन्मदिन है हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्देशक अभिषेक कपूर का और जाने माने पार्श्व गायक आदित्य नारायण का, जिनका अपने पिता उदित नारायण के साथ गाया ये गीत आज भी बहुत प्रसिद्ध है। सुन लेते हैं।
तू मेरा दिल, तू मेरी जान,
ओह आई लव यू डैडी।
तू मासूम, तू शैतान,
बट यू लव।
चलते चलते आज का विचार कि घर से जब बाहर निकलेंगे तो माँ की कीमत, और जब कमाने लगेंगे तो पिता की अहमियत समझ में आएगी। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और नीना अर्गल को आज सवेरे कार्यक्रम यही संपन्न करने की।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day. Namaskar.
तू मासूम तू शैतान।